नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं वसिष्ठनप्तहरं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। मार्कण्डेय पुराण अब उपसंहार की तरफ चल रहा है। सूरत और वैश्य ये दोनों मेधा ऋषि के पास अपनी अपनी एक परिस्थिति को लेकर आए थे। तो उन्होंने उस प्रसंग में दुर्गा देवी के विषय में बताया कितने कितने देवी ने अवतार लिए और कैसा कैसा उन्होंने काम किया। इधर देवी ने भी देवताओं से कहा कि जब तुम्हारे पर कोई आफत आए तो मुझे याद कर लेना, और तुमने जो हमारी प्रार्थनाएं की हैं वो प्रार्थनाएं तुम करते रहो, तुम्हारे पर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, कोई ग्रह दशा वगैरह कोई तुम्हारे बाधा नहीं देगी। देखो किसी भी पुराण में जब ऐसी बातें सुनते हैं तो इन बातों पर हमारा विशेष ध्यान जाता है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, यू हो जाएगा तो ये काम करो। ये सब होते हैं भाव की प्रधानता से, हम लोग करते हैं क्रिया की प्रधानता। फिर कहेंगे साहब देखो इसमें लिखा तो ऐसा होना हुआ तो नहीं, ये भाव प्रधान है। ये जितने भी फल है भागवत में भी लिखा है ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो वहां करना तो है लेकिन भाव उसमें विशेष रखना है, किस भाव से कथा कही गई है। अध्यात्म मार्ग में चलते हैं फिर कोई बाधा आती है ना, उसके लिए है ये। हम तो लौकिक मार्ग में चलते रहते हैं, लौकिक मार्ग की बाधा कोई बाधा मानते हैं, परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं कोई ऐसी वैसी बाधा आ जाए तो उसके लिए क्या करें, तो उसमें ये सब काम आती है। जितनी फलश्रुति है इसको फलश्रुति बोलते हैं, जितनी फलश्रुति है वो वहां काम आती है। इसलिए इनको लौकिक कामों को बनाने में नहीं लेना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ऐसे प्रचंड पराक्रम वाली जो देवी थी उसने देवताओं के देखते देखते वो अंतरित हो गई, अपने आप को छिपा लिया। अब देवता भी शत्रु तो मारे गए, निर्भय हो गए, यज्ञ का भाग उनको मिलने लग गया, अपने अपने अधिकार का उन्होंने पालन किया और संसार का नाश करने वाले दो शत्रु थे शुंभ और निशुंभ, ये दोनों ही देवी के द्वारा मारे गए। तो बाकी जितने बचे खुचे राक्षस थे उन्होंने कहा कि अब हमारे तो बड़ी दुर्गति होगी, वे पताल में चले गए। इस प्रकार वो देवी शाश्वत है, नित्य है, समय पर आवश्यकता होने पर प्रकट होती है, नहीं तो वो अपने को छिपा लेती है। जब कभी महाप्रलय होता है तब ये महामारी का रूप धारण भी करती है और महाकाली के रूप में समस्त ब्रह्मांड में विराजमान रहती है। ये सनातनी देवी है, सदा रहती है। जैसे भगवान रहते हैं ऐसे ये भगवान की शक्ति है, ये भी रहती है। जब मनुष्य का अच्छा समय आता है तब ये देवी घर में लक्ष्मी के रूप में रहती है, और जब उसके घर में बुरे दिन आते हैं तो यही देवी दरिद्रता के रूप में आती है। तो घर में संपन्नता हो कि साहब देवी जी पधार गई, घर में दरिद्रता आ जाए तो साहब देवी पधार गई हमारे यहां। कौन सी देवी की? दरिद्र देवी। और कौन सी देवी थी पहले की? लक्ष्मी देवी थी। इसलिए हर परिस्थिति के अंदर उसका पूजन करें और प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार करें। ऋषि कहते हैं कि देखो राजन, वो मेधा ऋषि, इस प्रकार मैंने तुमको देवी की महिमा बताई। वो इस जगत को धारण करती है, वो इस जगत का पालन करती है, और वो इस जगत का संहार भी करती है। वह देवी विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम और ये वेश्य और अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, और आगे भी लोग मोहित होते रहेंगे। अब देखो लोग क्या करते हैं, अपनी जो गलती होती है ना, वो कहते हैं देखो हमको तो भगवान ने मोहित कर रखा है, हमको तो भगवान ने मूर्ख बना दिया, हम क्या करें। मोहित होना दो प्रकार से है। एक तो मोहित होना माने इस ये जो माया है, इस माया को हम लोग हमारी दृष्टि से और समझते हैं और है ये कुछ और ही। तो ये जो बेसमझी है ये वो देवी नहीं होती है, ये तो अज्ञान जनित है, हमने अज्ञान। और कोई इसमें खासियत दिखती है, देखो ये वृक्ष है, इसको कोई पानी देते नहीं, कोई खाद देते नहीं, और इस वृक्ष के अंदर ऊप नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी टहनियां हैं, पत्ते हैं, सबके अंदर रस कहां से आ गया, कैसे ये हरा झक पड़ा है, और बरसों बरस हो गए इसको, इस वृक्ष को हो गए लगभग कितने बरस हो गए। सौ के आसपास हो तो पता नहीं है। तो ये वृक्ष है देखो, हरा झक पड़ा है एकदम, कि पृथ्वी से जल खींचता है, इसकी जड़ तो कैसे खींचते, वो जड़ें कैसे जल को लेती है, ये है माया। तो हम इसका मूल कारण नहीं समझ सकते, ये मोहित करना है, और ये हमारा है, ये तुम्हारा है, मैं ऐसा हूं तुम ऐसे हो, ये जो बात है ये हमारी माया है। दो माया है, विद्या अपर अविद्या दो। भगवान ने लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण तू मेरे से जिस माया के विषय में पूछता है वो माया दो है। एक तो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली माया है, जिस माया से सृष्टि पैदा होती है, ये माया किसी को दुख नहीं देती। ज्ञान मान जय एकन हो, जहां मान घमंड आदि कुछ नहीं होता, ये माया अलग। और दूसरी जो अविद्या की, अपनी गलती की जो है माया, वो वही अपने पैदा करते हैं। तो ये जो देवी है, ये देवी ऐसी है, इसकी माया ऐसी विलक्षण है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित होते हैं, और हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ज्ञानी लोग मोहित होते हैं, तो बात तो वही आई ना, ज्ञानी लोग मोहित होते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि ये माया विलक्षण है। इधर से आ जाइए महात्मा जी, इधर से आ जाइए और ध्यान बठिन कियो। और इसी माया के द्वारा जब इस माया का आदर करते हैं तो मनुष्यों को कभी भोग मिलता है, स्वर्ग मिलता है, और जो इस मोक्ष आते हैं तो उनको मोक्ष मिलता है। विराजी मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे क्रौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया और वे अत्यंत ममता और राज्य के अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल फिर तपस्या करने चले गए। उन्होंने देखा कि संसार में तो पार पड़ेगी नहीं, हम चाहे जैसी परिस्थिति बनाने कर लेंगे, इसके लिए आए ही नहीं हम, यहां अपने ढंग की परिस्थितियां बना बना करके जीवे इसके लिए नहीं आए। दोनों तपस्या के लिए चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मृणमयी मूर्ति, मृण माने मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा इनकी आराधना करने लगे। इन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार होकर के देवी में मन लगा करके एकाग्रता से उनका चिंतन किया। लगातार 3 बरस तक उन्होंने वहां आराधना की। तब वो देवी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देती हुई कहने लगी, यत् प्रार्थिते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत् प्राप्यताम सर्वं परितुष्टा ददामि ते। हे राजन, तुमने मेरे से जो प्रार्थना की है, और हे वैश्य, तुम भी मुझसे जिस बात के लिए प्रार्थना रख करके आए हो, वो सब अपनी बात मेरे सामने रखो, मैं बड़ी संतुष्ट हूं, तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगी। मार्कंडेय जी बोलते हैं कि तब राजा ने ये वरदान मांगा कि दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा। अब इस जन्म का तो राज्य गया, अब अगले जन्म में मैं राजा बनूं और मेरा राज्य फिर जावे नहीं। देखो ये वासना कैसी है। प्रताप भानु राजा की कथा रामायण में हम पढ़ते हैं, कितना उसके अंदर ज्ञान था सबका, लेकिन अंदर की पूरी वासना नहीं गई। ऐसे इस राजा ने देवी की आराधना की, देवी प्रकट हो गई, फिर भी अंदर से राज्य की वासना थी। उसने कहा, देखो देवी, इस ये राज्य तो मेरे हाथ से चला गया, कोई बात नहीं, इसको सहन कर लूंगा, अगला मेरा जन्म हो तो मुझे राज्य मिले और उस राज्य को कोई छीने नहीं, शत्रुओं की कोई सेना आ भी जाए तो मैं उसको नष्ट कर लूं, ऐसा ऐसा वरदान मांगा। वैश्य का चित्त था, वो संसार से खिन्न होकर विरक्त हो चुका था, वो बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने ये कहा कि देखो महाराज, इस संसार में तो जो मिलेगा उससे सुख तो नहीं मिलेगा, वस्तु मिल जाएगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख लेना हमारे हाथ की बात है, सुख लेना दुख लेना अलग बात है। आप तो ज्यादा ज्यादा हमको क्या दे दोगे, आप ज्यादा ज्यादा वस्तु दे दोगे, ये दे दोगे वो दे दोगे, परंतु इस संसार के अंदर जगह जगह जो मेरी ममता अटकी हुई है, अहंता भरी पड़ी है, आसक्ति है, इसका नाश महाराज कैसे करूं। खूब धन है लेकिन धन की इच्छा भरी पड़ी है तो सुख नहीं होगा। तो महाराज जी ने एक बात कही कि जैसे किसी आदमी में लोभ है तो अंदर लोभ जब पड़ा है तो उसके पास कितना ही धन आ जाए उसको सुखी नहीं कर सकता, वो सुखी नहीं हो सकता। और जिसके अंदर लोभ की मात्रा नहीं है और उसके पास कई वस्तुओं का अभाव है तो वो आदमी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि न तो धन की अधिकता से आदमी सुखी होता है और न ही वो धन की अल्पता से दुखी होता है। धन के कम होने और ज्यादा होने का कोई महत्व नहीं है, अंदर से लोभ निकलना चाहिए, ऐसे ही संसार की कामना निकलनी चाहिए, क्रोध निकलना चाहिए। उन्होंने यही वरदान मांगा कि हे मातेश्वरी, आप हमारी अहंता ममता आसक्ति जो मेरे हृदय में गंदे भाव उनको बाहर निकाल दो। राजा से कहा, दोनों ने अपने अपने बात रखी ना, तो देवी ने दोनों को कहा, सुनो राजन, स्वल्प ही रहो वीर नृपते, स्वम राज्यम प्राप्स्यते प्राप्स्यते भवान, तुमको थोड़े दिनों में राज्य मिल जाएगा। और हत्वा रिपुन अखिलस अस्खलितम, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। तव तत्र भविष्यति, तुमने तो अगले जन्म में मांगा, हम तो कहते हैं इसी जन्म में तेरा राज्य